भूतेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यार ज्ञानशक्ति कोटि सूर्यरन्नु मीरिदे मत्तु यार दिव्य ध्वनियु लोकहितव माडिदे ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की
जय बोलो परम पूज्य इच्छा गुरुवर श्री नियम सागर जी मुनि महाराज की मुनि संघ की नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी जो अभी मंगलाचरण किया है ना तो इसका अर्थ बता दीजिए ना
उनके पास लिखा हुआ है क्या लिखा देते निकालना है ठीक संसार की चतुर्गति से मुक्त होने के लिए संसारी जीव चारों गति में अपराध करता हुआ भ्रमण कर रहा है चार गति में जहाँ भी चला जाता है वहाँ अपराध ही करता रहता है और यह अपराध निरंतर चलता है छोड़ना चाहे इसको रोक देना चाहे रोक भी नहीं पाता मजबूरी होती है जिस अपराध को रोक नहीं सकता उसको करना पड़ता है इसी अपराध को रोकने के लिए वह सत्संग भी करता है सत्संग से ज्ञान मिलता है सम्यक ज्ञान की उपलब्धि होती है उस ज्ञान के द्वारा संसार क्या है आत्मा क्या है बंधन क्या है मोक्ष क्या है तत्व क्या है अतत्व क्या है अपराध क्या है निरपराध क्या है शांति क्या है अशांति क्या है सारी बातें सत्संग के माध्यम से ज्ञान के द्वारा पता चल जाती हैं जब सत्संग मिलता है शरीर की दो आंखें तो काम करती रहती हैं देखने का कार्य करती हैं किंतु भीतर की भी जो दो आँखें हैं उन आँखों में मंदता अवश्य है, दिखाई देता है किंतु समीचीन दिखाई नहीं देता। आंख हो और दिखाई देता हो लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देता या उल्टी दिखाई देता है तो यह आंखों की खराबी है, यही माना जाएगा। आंखें भीतर हैं, भीतर की आंखें बाहर की वस्तुओं को, बाहर की परिस्थिति को यदि विपरीत जानता है, देखता है तो बाहरी आंखों का अपराध नहीं बल्कि भीतरी जो दो आंखें हैं उनका अपराध माना जाएगा। सारे संसारी जीवों के पास दो ज्ञान होते हैं, कम से कम दो ज्ञान होते हैं, टोटल ज्ञान आठ हैं, उनमें से दो तो नियम से होते हैं। आठ ज्ञान पता है ना, कोमति ज्ञान, कोश्रुत ज्ञान, को अवधि ज्ञान, सुमति ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान, सो अवधि ज्ञान, मनः परि ज्ञान, केवल ज्ञान, ये पांच। इसमें पहले के जो तीन ज्ञान हैं वो हमारे साथ अनादि से नहीं हैं, उसमें से दो ज्ञान हमारे साथ अनादिकाल से चले आ रहे हैं, कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान। यही हमारी ओरिजिनल मूल अनादिकाल से रहने वाले, सतत रहने वाले ये दो ज्ञान हमारी भीतरी आंखें हैं, भीतर की आंखें। और ये कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान होने के कारण ये आंखें है तो आंखें लेकिन वस्तु को विपरीत दिखाने में निमित्त बनती है, मतलब खराबी है। कोई आंखों में खराबी है, वो खराबी क्या है यदि ये प्रश्न उठाया जाए। जीव है, आत्मा है, जन्म मरण है, ये सब चीजें अनादिकाल से हैं। आत्मा के साथ ज्ञान है और दो ज्ञान हमेशा रहते हैं, एकेंद्री जीव से लेकर संगी पंचेंद्री जीव तक के सभी चारों गति के जीवों में कम से कम मिनिमम दो ज्ञान तो होते ही हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति और श्रुति ये यदि कुमति और कुश्रुत के रूप में हैं तो आंखों में जरूर खराबी है और इसका ऑपरेशन आवश्यक है। जब तक हम इन आंखों को रिपेयर ही नहीं करेंगे वस्तु का स्वरूप सही सही दिखाई नहीं देगा। ऑपरेशन करना पड़ेगा क्या? नहीं। उसके लिए डॉक्टर चाहिए क्या? नहीं। सत्संग जिसका हम लेते हैं और सत्संग के कारण से यदि इन दोनों आंखों की खराबी दूर हो गई तो समझ लेना वे ही हमारे गुरु बन गए। जिसके माध्यम से ऑपरेशन हो, हमारी आंखें ठीक हों, वो कोई भी हो हमारे लिए गुरु हैं। तो ये दो ज्ञान हैं, कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान। अगर इसी को सुमति ज्ञान और सुश्रुत ज्ञान कहा जाए तो ये दोनों ज्ञान स्वस्थ कहलाएंगे, निरोग कहलाएंगे या रोगी निरोगी कहलाएंगे। ये कुमति और कुश्रुत के रूप में हैं, तो इनको सुमति और सुश्रुत के रूप में कन्वर्ट करना है, और इसको कन्वर्ट करने का अर्थ ही है ऑपरेशन करना है, कु का ऑपरेशन करना है और वहां पर सु को बिठाना है, कु का ऑपरेशन करना है और सु को बिठाना है, तो ये आंखें स्वस्थ बन जाएंगी। सुव्यवस्थित हो गया, बैठ गया, तो ये आंखें स्वस्थ मानी जाती हैं। तो स्वस्थ होना है या नहीं होना, ये रोगी के ऊपर डिपेंड करता है। रोगी स्वस्थ होना चाहता है तो ऑपरेशन कराएगा, अस्वस्थ ही रहना चाहता है तो ऑपरेशन करने का प्रयास पुरुषार्थ नहीं करेगा। अब यह रोग किस कर्म के कारण से होता है, वहां पर सु होना चाहिए था, कु क्यों हुआ? तो इसके लिए ज्ञानावरणी कर्म को कारण नहीं ठहराया। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से जीव अपने ज्ञान से को या सो नहीं होता, बल्कि मोहनी कर्म के कारण से सु या कु हो जाता है। कु यह बीमारी है, सु यह स्वास्थ्य है। कु को हटाना है तो किस कर्म के तरफ हमारी दृष्टि जाना चाहिए? मोहनी कर्म के तरफ। ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान के बल को हीनाधिक कर सकता है। ज्ञान के बल पर, जानने की शक्ति पर वह अपना प्रभाव डाल सकता है, लेकिन ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान को विपरीत नहीं बना सकता, उल्टा नहीं बना सकता, ज्ञान को पलटा नहीं सकता। ज्ञान को विपरीत बनाना, पलटाना, बीमार कर देना, उसको अस्वस्थ बना देना, यह कार्य करने वाला ज्ञानावरणी कर्म नहीं बल्कि मोहनीय कर्म है। ज्ञान हमारा उल्टा हो गया तो मोहनी कर्म में से कौन सा मोहनी कर्म उल्टा करता है, यह विचार करने योग्य है। मोहनी कर्म मूल में दो प्रकार का होता है, एक दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी कर्म से ज्ञान उल्टा हो जाता है, चारित्र मोहनी कर्म से वह ज्ञान इंद्रिय विषयों में, पर पदार्थों में आसक्त होता है। दो कर्म हैं, दर्शन मोहनी कर्म और चारित्र मोहनी कर्म। आत्मा का असली यदि रोग है तो ये मोहनी कर्म है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी यानी क्या और चारित्र मोहनी यानी क्या? आत्मा के तीन गुण हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इन तीन गुणों में से कितने गुणों का घाती है यह मोहनी कर्म, ये यदि पूछते हैं तो तीनों गुणों के घाती है यह मोहनी कर्म। तीनों गुणों की। ज्ञानावरणी कर्म तीन गुणों को घात करता ही नहीं, और ज्ञानावरणी कर्म का फल जो मिलता है वह प्रथम गुणस्थान से लेकर 13-12वें गुणस्थान तक ज्ञानावरणी कर्म का उदय रहता है। जब तक हम अरहंत नहीं बनते, अरहंत 13वें गुणस्थान में बन सकते हैं। अरहंत जब तक हम नहीं बनते तब तक ज्ञानावरणी कर्म का उदय जीव को रहता है, और इस ज्ञानावरणी कर्म के उदय से सिर्फ फक्त इतना ही कार्य होता है कि ज्ञान में घटन बढ़न होता रहता है। ज्ञान की शक्ति, जानने की शक्ति में घटन बढ़न होता है। क्षायोपशम बढ़ेगा तो ज्ञान बढ़ेगा, क्षायोपशम घटेगा तो ज्ञान घटेगा, परंतु ज्ञान घटना बढ़ना इतना ही होता है, ज्ञान उलट सुलट नहीं होता। ज्ञान को उलट सुलट करने वाला यदि कोई कर्म है तो वह मोहनी कर्म है। इस मोहनी कर्म को जो कंट्रोल में ले लेता है, मोहनी कर्म को कंट्रोल में लेने का प्रयास करता है, तो वह प्रयास करने वाला ये माना जाता है कि वह ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो गया। ऑपरेशन का मन बना लिया। मन तो बनाना पड़ेगा ना, मन ही नहीं बनाए तो ऑपरेशन कैसे होगा, डॉक्टर क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। मोहनी कर्म को समझना जरूरी है। 8 कर्मों में मोहनी कर्म ही सबसे बड़ा शत्रु है जीव का। नमो अरिहंतानम, जिन्होंने अरि को, अरि यानी शत्रु, जिन्होंने शत्रु को जीत लिया वे अरिहंत हैं। शत्रु कौन 8 कर्म में? मोहनी कर्म। वैसे तो शत्रु कहने से घाती कर्म को जीतने वाले अरहंत बनते हैं, ये अर्थ जरूर लगाते हैं अपन, है ना? कितने कर्मों को नाश कर अरहंत बनते हैं? 4 कर्मों को। 4 कर्मों को जीत कर अरहंत बनते हैं, पर 4 कर्मों को जीतने से पहले उन 4 में से किस कर्म को जीतने का प्रयास हमारा होना चाहिए? मोहनी कर्म। घाती कर्म में भी मोहनी कर्म बहुत बड़ा शत्रु है। इसी कर्म के वजह से सारे के सारे कर्म आत्मा को बंधते रहते हैं। सारे कर्म और इस मोहनी कर्म के वजह से ये 3 जो गुण है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये उलट पुलट होते रहते हैं। सम्यक दर्शन यदि रहेगा तो वह मिथ्या ज्ञान के रूप में कन्वर्ट हो सकता है मोहनी कर्म के कारण से। ज्ञान, सम्यक ज्ञान रहेगा तो मिथ्या ज्ञान में परिवर्तित हो सकता है। चारित्र संयम यदि रहेगा तो असंयम में कन्वर्ट हो सकता है। इस प्रकार असंयम संयम बन जाता है, मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाता है, मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन बन जाता है। इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अगर बन गया तो मोहनी कर्म का ऑपरेशन करने से, मोहनी कर्म का ऑपरेशन करने से ज्ञान सम्यक ज्ञान बनता है। और यदि उसका ऑपरेशन करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तैयार नहीं होंगे तो वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान के रूप में ही विद्यमान रहता है। और मिथ्या ज्ञान कब से है जीव के साथ? अनादि काल से है। इसी मिथ्या ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाना है, इसी सम्यक दर्शन को मिथ्या दर्शन को सम्यक दर्शन बनाना है, उसी मिथ्या चारित्र को सम्यक चारित्र के रूप में कन्वर्ट करना है, तो इसका स्वरूप समझना आवश्यक हो जाता है। मोहिनी कर्म का उदय ही हमको परमेष्टि पद पर जाने नहीं देता। कौन सा पाठ चल रहा है? दूसरा, परमेष्टि पद। परमेष्टि पद पर जाने से विघ्न करने वाला, रोकने वाला कर्म कौन सा? मोहिनी कर्म। सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना क्या साधु बन सकेंगे? नहीं बन सकते। सम्यक ज्ञान प्राप्त किए बिना क्या साधु बन सकेंगे? नहीं। संयम धारण किए बिना क्या साधु परमेष्टि बन सकते हैं? नहीं बन सकते। इसका मतलब रत्नत्रय को रोकने वाला यदि कोई कर्म है तो वह मोहिनी कर्म है। वही मोहिनी कर्म दो प्रकार का है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी कर्म सम्यक दर्शन को नष्ट करता है। दर्शन मोहिनी कर्म सम्यक दर्शन को नष्ट करता है और चारित्र मोहिनी कर्म चारित्र को नष्ट करता है। इसलिए उनका नाम भी सार्थक है। सम्यक दर्शन को नष्ट करने वाला कर्म कौन? दर्शन मोहिनी। और चारित्र को नष्ट करने वाला चारित्र मोहिनी। दो प्रकार से इसको विभाजित करना चाहिए। मोहिनी कर्म टोटल 28 प्रकार का होता है। ये 28 भेद आप लोगों को याद हैं? नहीं याद? नहीं दर्शन मोहिनी के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये 3 भेद हैं। और चारित्र मोहिनी के 25 भेद हैं। ये 25 और ये 3, इस प्रकार 28 हैं। चारित्र मोहिनी 25 हैं, दर्शन मोहिनी 3 हैं। इसको जानना बहुत जरूरी है, सबको जरूरी है। जानने का पुरुषार्थ करना जरूरी और इसको जीतने का प्रयास करना जरूरी। और ये 28 मोहिनी कर्म सबके पास हैं, सबके पास, एक भी कम नहीं है। सबके पास 28 के 28 रहते हैं। अट्ठाईस लिखेंगे? लिखो, अच्छा है। ये देखो, इसमें है, वैसा लिखने की जरूरत नहीं। भेद प्रभेद में, हाँ इसमें है, मोहिनी कर्म के 28 भेद। उससे अच्छा है यहाँ पर निकालो। भेद प्रभेद में तो केवल नाम दिया गया है, गुणस्थान नहीं दिया होगा ना? दिया है, गुणस्थान भी है। तो भेद संग्रह सबके पास है ना? सभी के पास भेद संग्रह पुस्तक है? चलो थोड़ा सा उसका परिचय पाते हैं। हाँ, गुणस्थान नहीं दिया? नहीं दिया है ना, अनंतानुबंधिया कषाय दर्शन मोहिनी इसमें नहीं है। अनंत नहीं, 25 तो भेद हैं, उनके गुणस्थान भी हैं। दर्शन मोहिनी मिथ्यातु सम्यक, मिथ्यातु सम्यक प्रकृति। यहाँ देखो, भेद संग्रह पुस्तक निकाला है क्या? हाँ, हम बताते हैं। आठवां पेज निकालो, आठवां पेज, आठवां पेज निकालो। देखो, ये सब्जेक्ट इतना महत्वपूर्ण है, इसी को सबसे ज्यादा समझना अपने को। अगर ये 28 मोहिनी कर्म अच्छी तरह से समझ में आ गए और इनको नष्ट करने का अगर प्रयास किया, तो फिर ये पुसद चातुर्मास तो बिल्कुल सफल ही नहीं, बल्कि परमेष्टि बनने की ओर निकलेगा। जिसको नहीं है वही ले, डबल डबल ना ले। ना, एक रखो अपने बैग में, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु डबल ना ले आप लोग। तो फिर क्यों दिया? फिर वापस करो। नहीं, अभी अभी पढ़ाई तक रखो और बाद में वापस करो, अभी समझाने तक रखो। इसको घर में रख कर के नहीं रहना। आप लोग घर में कैसे रख के आते हैं पुस्तकें? क्लास चल रही है तो पूरे बैग में पूरी सामग्री रहना चाहिए, नोटबुक रहना, पेन रहना, पुस्तक रहना। ऐसे कैसे हो जाता है आप लोगों का? देखो, सबसे पहला ये नियम ले कि कोई भी पुस्तक हम बैग से घर में रख करके नहीं आएंगे, सब बैग में रहेंगे, चाहे नोटबुक हो, चाहे पुस्तक हो, चाहे पेन हो। पेन भी रोज देना पड़ेगा क्या? ठीक है, ये पेज नंबर 8 है, 13वां पान, नहीं नहीं पेज नंबर 8 निकालना है। वो कर्म प्रकृति में आया है, गुणस्थान को अपने को समझना है। आप 13 पेज बता रहे हैं तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर कर्म प्रकृतियों का नाम है। देखो, हाँ ठीक है, यहाँ पर 28 नाम बताए, मोहिनी कर्म के 28 वेद हैं। उसमें दर्शन मोहिनी के कितने हैं? 3। वो 3 के नाम नीचे हैं, मिथ्यातु सम्यक, मिथ्यातु सम्यक प्रकृति। और चारित्र मोहिनी के 25 हैं, अनंतानुबंधी 4, क्रोध मान माया लोभ, ये 4 अनंतानुबंधी के हो गए। अप्रत्याख्यानावरण के 4 हैं, वो भी क्रोध मान माया लोभ। प्रत्याख्यानावरण के 4 हैं, क्रोध मान माया लोभ। संज्वलन के 4 हैं, क्रोध मान माया लोभ। और अकषाय अर्थात तो नो कषाय, 2 नाम हैं। अकषाय कहो या नो कषाय को, एक ही बात है, कुछ भी एक कह सकते हैं। 9 भेद हैं इसके, हास्य रति अरति शोक भय जिगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुंसक वेद, ये 9 नौकषाय कहलाती हैं। तो इनके गुणस्थान के लिए पेज नंबर 8 निकालो। एक ही बात है, नौकषाय अनिषेधवाचक है और नो भी निषेधवाचक है। अ भी लगाते हैं, नो भी लगाते हैं, नो इंग्लिश में नो लगाते हैं तो हिंदी भी लगाते हैं। वो संस्कृत शब्द है नो, वो संस्कृत शब्द ही इंग्लिश में गया है, इंग्लिश का संस्कृत में नहीं आया। संस्कृत प्राचीन भाषा, उसका नो इंग्लिश में गया है। नो यानी किंचित, किंचित अथवा अभाव। अ लगाएंगे तो अभाव और किंचित दोनों अर्थ निकलते हैं, नो लगाएंगे तो निषेधवाचक उसका भी अभाव अर्थ निकलता है। नो कषाय यानी ये कषाय नहीं है तो क्या है, कषाय के पोषक निमित्त हैं, कषाय को सहायता करने वाले चीजें विषय। तो आठवां पेज पर देखो गुणस्थान सहित दिया है। एक जानकारी गुणस्थान की संक्षिप्त में आप लोगों को सबसे पहले ये दिया जाए, 24 थाने में हुआ क्या गुणस्थान वगैरह, अभी नहीं हुआ ना, पढ़ना हो गया, तो थोड़ा सा गुणस्थान का परिचय हम सबसे पहले बताते। गुणस्थान क्या है, बहुत से लोगों को ये प्रश्न उठता है कि गुणस्थान गुणस्थान कहने में आता है, गुणस्थान है क्या। गुणस्थान का मतलब गुणों का स्थान, गुणस्थान ये गुण आत्मा में ही प्रकट होते हैं, गुणों की अभिवृद्धि होते जाना ये गुणस्थान है, तो गुणों की तरक्की होती है गुणस्थानों में। गुणस्थान कितने हैं, 14 गुणस्थान हैं, ये 14 सीढ़ियां हैं, गुणों को बढ़ाने की ये सीढ़ियां हैं, स्टेज हैं। किस स्टेज पर कितने गुण आपके विकसित हुए ये दर्शाता है गुणस्थान। गुणों का स्थान गुणस्थान, और दोषों का स्थान दोषस्थान, क्या पाकिस्तान हाँ ठीक है, दोष यदि करोगे तो कुछ भी बनेगा, दोषस्थान गुणस्थान राजस्थान अर्वस्थान बहुत स्थान है दुनिया में, बहुत सारे स्थान है, उन सारे स्थानों में गुणस्थान प्रधान है। गुणस्थान की शरण से ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजस्थान जाओगे तो भी मोक्ष नहीं मिलने वाला, और पाकिस्तान जाओगे तो भी मोक्ष नहीं मिलने वाला। गुणस्थान की शरण में जाकर उनकी सीढ़ियों को चढ़ने से आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो गुणस्थान किसको कहते हैं, आत्मा के गुणों के सीढ़ियों को या आत्मा के गुणों के स्थानों को गुणस्थान कहते हैं। सुलभ सीधा सस्ते शब्द में, सीधे शब्दों में अगर कहें तो गुणों के स्थानों को गुणस्थान कहते हैं। और ये गुणस्थान कहाँ प्रकट होते हैं, आत्मा में, हमारी आत्मा में। पहला गुणस्थान यदि है तो हमारा गुणस्थान सभी गुणों से शून्य है, एक भी गुण नहीं है। और मुख्य रूप से गुण जो होते हैं वो सर्वप्रथम समझने के लिए तीन ही गुण होते हैं, इन्हीं तीन गुणों को विकसित करना है 14 सीढ़ी पर, 14 स्थानों पर। कौन से ये तीन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। पहला गुणस्थान हो तो गुण एक भी नहीं, शून्य है। दूसरा गुणस्थान हो तो भी शून्य है। तीसरा गुणस्थान हो तो भी शून्य है। तो फिर ये प्रश्न उठेगा, फिर इनको गुणस्थान क्यों कहा। गुणस्थान इसलिए कहा, इन्हीं गुणस्थानों में रहने वाला जीव गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करता है, प्रयास भी यहीं से होता है, इसलिए गुणों की उत्पत्ति का स्थान होने से गुणस्थान कहा। दोष हैं पर दोष स्थान में ही गुण प्रकट होंगे ना, दोष हटाएंगे तो गुण प्रकट होंगे। तो दोषों को हटाने पर गुण प्रकट यदि होते हैं तो पहला गुणस्थान दोष वाला गुणस्थान, उसमें एक भी गुण नहीं है, न सम्यक दर्शन है, न सम्यक ज्ञान है, न सम्यक चारित्र है। अगर इस दोष स्थान के अंदर रह करके हम यदि दोषों को हटाना चाहते हैं तो कौन सा दोष पहले हटाना पड़ेगा, मिथ्यात्व को हटाना पड़ेगा। तो मिथ्यात्व का उदय किस गुणस्थान में रहेगा, मिथ्यात्व दोष है, मिथ्यात्व कर्म भी है, और मिथ्यात्व की अनुभूति तो आत्मा की विकृत वैभाविक परिणति है, अशुद्ध परिणति है, दोषपूर्ण परिणति है। तो इस दोषपूर्ण परिणति से ऊपर उठने के लिए जीव को क्या करना पड़ेगा? मिथ्यात्व कर्म को जीतना पड़ेगा। मिथ्यात्व कर्म कौन सा मोहनी कर्म है? दर्शन मोहनी, दो भाग की 28 का दर्शन मोहनी 3 और चारित्र मोहनी 25, ऐसे दो विभाग हो गए मोहनी कर्म के, दर्शन मोहनी 3 और चारित्र मोहनी 25। दर्शन मोहनी 3 पहला वाला कौन? मिथ्या। तो वहां लिखा है 13वें पेज पर, 13वें पेज पर भेद मिथ्यात्व, पढ़ो उसको, उच्चारण करो, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। देखो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, कौन से बिना देखे बोलो देखेंगे? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। देखो याद होना चाहिए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। उल्टा बोलो तो याद हो जाएगा, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व, मिथ्यात्व। और एक बार सीधा बोलो तो याद हो जाएगा, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। याद करने की ये तरीका है, आइडिया है, जल्दी से जल्दी याद हो जाए। इसके लिए कैसे याद करें? तो क्या करना, एक बार सीधा बिठाना और सीधा बिठाने के बाद उल्टा पढ़ना, देखे बिना उल्टा पढ़ते जाना तो दिमाग में जल्दी बैठ जाता है, इसके पहले ये है, इसके पहले ये है, इसके पहले ये है, ऐसा। बोलो फिर से। ठीक, चारित्र मोहनी के भी 25 भेद हैं, इसको भी सुलभता से याद करें तो ऐसा करना, पहले चार कषाय, कषाय ग्रुप है, चार चार के चार कषाय हैं, अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यानावरणी कषाय, प्रत्याख्यानावरणी कषाय और संज्वलन कषाय, और अकषाय तो नौ हैं, उसको बाद में करेंगे। पहले कषाय कितने हैं? चार कषाय। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यानावरण कषाय, प्रत्याख्यानावरण कषाय, संज्वलन कषाय, ये चार हैं। और इस इन इन सभी चारों के चार चार भेद हैं, क्रोधमान माया लोभ, क्रोधमान माया लोभ, क्रोधमान माया लोभ, क्रोधमान माया लोभ, ये चार बार। और ये चार चार कितने हो गए? 16 हो गए। और 16 कषाय हैं, अकषाय कितने हैं? 9 हैं। 9 और 16 25 हो गए। तो इनको याद करना, कैसे करोगे? पहला अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, ये चार नाम याद रखने पड़ेंगे। और क्रोधमान माया लोभ तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोज रोज क्रोध करते हैं इसलिए वो याद है। मान भी करते हैं, माया भी करते हैं, लोभ भी, अनुभव में आया हुआ है ये रोज, इसलिए याद है ये, इसको याद करने की जरूरत नहीं। परंतु केवल याद ही नहीं करना, ये क्रोध मान माया लोभ छोड़ना भी है, छोड़ने के लिए याद करना है। तो ये चार भेद अनंतानुबंधी आदि नाम, पहला वाला अनंतानुबंधी, दूसरा वाला अ अ प्रत्याख्यानावरण, दो नाम जो हैं एक जैसे हैं वो, इसमें एक में अ लगा है केवल और एक में अ लगा नहीं है। तो अनंतानुबंधी के पश्चात जो बोलोगे वो अ वाला बोलोगे, फिर तीसरे नंबर में जो है वो प्रत्याख्यानावरण है, और चौथे नंबर में जो है वो संज्वलन है। बोलो देखेंगे, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। उल्टा बोलो, देख के बोल रहे थे या बिना देखे बोल रहे थे? तो याद नहीं होगा, देख के बोलोगे तो याद कभी नहीं होगा। एक बार सेटिंग होने के बाद, पहला तो बिठाना चाहिए, सेट करना चाहिए, सेटिंग होने के बाद एक बार सीधा बोलो, एक बार उल्टा बोलो, फिर एक बार बोलो, फिर एक बार, तीन बार बोलोगे ना वो याद ही हो जाएगा। ऐसा याद करने की तरीका ये होती, कोई भी चीज़ को याद करना हो एकदम बहुत भी नहीं करना, थोड़े थोड़े लेना, उसमें से चार चार पाँच पाँच लेकर के याद करना। तो ऐसा तो हो गया, कषाय 16 कषाय याद हो गई, अब रहे कितने, 9 ही रह गए, 28 में से 9 रह गए, और याद करने के लिए कितना टाइम लगा, 2 मिनट लगे। तो 2 मिनट में आप मतलब इतने बड़े विषय को याद कर सकते हैं, तो पूरा चातुर्मास दिया जाए तो पुस्तक का पुस्तक रट लेंगे। याद भी होना चाहिए, कोई भेद है, मुख्य रूप से भेद ही हैं, याद करने योग्य विषय जो होता है भेद ही याद करने पड़ते हैं, विषय याद करने की जरूरत नहीं रहती। विषय को तो बिठाते जाओ और विचार करके, थिंकिंग करके, उसको विचार करते करते उसको समझते जाओ, विषय बैठ जाता है। एक बार समझा हुआ विषय भूलता नहीं, विषय समझने के योग्य होता है और भेद कंठस्थ करने के योग्य होते हैं। कंठस्थ करना है तो कितने कंठस्थ किए, अभी 16 और वो 3, 17, 18, 19 तो आपको कंठस्थ हो गए, अब 9 ही करना है। 9 कैसे करेंगे, तो उसमें स्टेप बना लो, तीन तीन के, हास्य रति अरति शोक, पहला चार, फिर बाद में 5, हास्य रति अरति शोक, हास्य रति अरति शोक, शोक अरति रति हास्य, हास्य रति अरति शोक, हास्य रति अरति शोक, ये चार बैठ गए, अब 5 ही रह गए। भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद, भय जुगुप्सा ये 2 हैं, स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद ये तो मालूम है ही, अंत के तो सबको मालूम है, पर आप 2 करना बीच के, पहले के, भय जुगुप्सा इसको जोड़ दो ऊपर के 4 के साथ, हास्य रति अरति शोक, भय जुगुप्सा, अब 3 वेद, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये हो गए अकषाय, ये 9 भेद हो गए अकषाय के, 9 भेद। अब इसको गुण स्थानों में समझना है, ये तो भेद रटा गया, अब इसको ये कषायें ये कर्म किस गुण स्थान तक, ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में जीव को त्रास देता है, जीव को मुसीबत खड़ा कर देता है, ये किस किस गुण स्थान तक कौन सा कर्म हमको सताता है, ये भी समझना पड़ेगा। तो उन गुण स्थानों की संख्या को भी याद रखना चाहिए। परिणामों की हाँ वृद्धि होना, विशुद्धि में वृद्धि होना, विशुद्धि अवस्था बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, आत्मा के शुद्ध परिणाम का विकास हो जाए, इसी को गुण कहा जाता है। उस विशुद्धि स्थान पर सम्यक दर्शन स्वयं उपलब्ध होता है, ज्ञान स्वयं उपलब्ध होता है, और चारित्र की तरक्की स्वयं होती जाती है। पहला क्षौक्षम अवस्था में रहता है, फिर क्षायिक अवस्था में रहता है, फिर वो सिद्ध अवस्था में भी रहता है। चारित्र कम विशुद्धि के काल में क्षायोपशमिक रहता है, ज़्यादा विशुद्धि बढ़ जाए तो वही क्षायिक बनता है, और विशुद्धि बढ़ जाए तो सिद्ध अवस्था की उपलब्धि हो जाती है। तो ये गुण हैं अपने 3, इन्हीं 3 गुणों को विकसित करने के लिए हम गुण स्थानों का अभ्यास करते हैं। 3 गुण को विकसित करना है, इसलिए मोहिनी कर्म को समझना पड़ेगा, समझ करके कौन किस मोहिनी कर्म का क्या स्वभाव है, उस स्वभाव को कैसे हटाया जाए, ये चिंतन मनन करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा अपने को, शास्त्र पढ़ना और छोड़ना, पढ़कर छोड़ने के लिए नहीं, शास्त्र में क्या पढ़ा और किस कर्म का क्या स्वभाव है उस स्वभाव को फेल करने के लिए हमको कौन सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ये सब समझ समझ करके आगे बढ़ना है। तो पहले उसको प्रैक्टिकल करेंगे, अभी है अपने पास समय है, बहुत 20 दिन है अभी, 10 लक्षण से पहले 10 लक्षण से पहले अपने को पहले समझना है और फिर प्रैक्टिकल करना है। 10 दिन जो 10 लक्षण के आते हैं वो क्या है, उत्तम क्षमा मार्दव, ये मोहनी कर्म को नष्ट करने से तो उत्तम क्षमा आएगा। क्षमा का घातक कौन है, क्रोध। और ये चार कषाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजोरण, चार कषाय, इसके सबके क्रोध हैं। अनंतानुबंधी क्रोध अलग है, अप्रत्याख्यानावरणी क्रोध अलग है, उस प्रत्याख्यानावरणी क्रोध अलग है और संजोलन क्रोध अलग है। तो चारों क्रोधों को जीतने से उत्तम क्षमा आता है, या इसमें से कुछ क्रोधों को जीतने से, चार हैं, कितने जीतने से उत्तम क्षमा आएगा, चार नहीं, चारों कषायें जीतने से यदि उत्तम क्षमा आता है कहेंगे तो मुनि महाराज के पास उत्तम क्षमा होना ही नहीं चाहिए। जो अक्षम्य है, उत्तम क्षमा गुण को प्रकट करने के लिए जो अक्षम्य क्रोध है उसको पहले त्याग करना पड़ेगा, और वो तीन है। अनंतानुबंधी क्रोध को करना अक्षम्य क्रोध है, ये इसको करने से उत्तम क्षमा कभी प्रकट होगा नहीं, इसको तो पूर्णतः त्याग करना पड़ेगा। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध को भी त्यागना पड़ेगा, प्रत्याख्यानावरण क्रोध को भी त्यागना पड़ेगा। संज्वलन क्रोध हो चलेगा, उत्तम क्षमा के धारी मुनि, ये जो 10 लक्षण है ना, 10 धर्म, ये 10 धर्म किसके जीवन में प्रकट होते हैं, क्या ये याद है, पता है? नहीं नहीं नहीं, आचार्य परमिष्टि ही नहीं, फिर मुनि के पास ये 10 धर्म नहीं रहते, ऐसा हो जाएगा, नहीं रहते हैं ये 10 धर्म, प्रकट हुए बिना तो साधु परमिष्टि बन ही नहीं सकते, संयम नहीं आ सकता। तो उत्तम संयमी कौन, ये तीनों परमिष्टि उत्तम संयमी हैं, साधु परमिष्टि, उपाध्याय परमिष्टि, आचार्य परमिष्टि, तीनों संयमी हैं, त्यागी हैं, उत्तम क्षमावान हैं, सब कुछ हैं। छठे सप्तम गुणस्थान में कौन रहते हैं, मुनि महाराज। छठे सप्तम गुणस्थान में मुनि महाराज रहते हैं। सबसे पहले वही कर ले अपन, व्यवस्था व्यवस्थित रूप से दिमाग में बिठाएं, पेज नंबर 8 निकालो। ये दिया है 25 कषाय, अनंतानुबंधी 4 कषाय, ठीक है। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध के आगे ये क्या दिया है, गुणस्थान। गुणस्थान किस गुणस्थान तक यह उदय में रहता है और जीव को अपना फल देता है, बुरा फल, किस गुणस्थान तक बुरा फल देता है उदय में आकर, जहाँ तक इनका उदय रहता है वहीं तक इनका बंद भी होता है। उदय के बिना बंद नहीं होता, कर्म का उदय आने पर और वैसे उदय के अनुसार हमारे भाव होने पर कर्म का, नया कर्म का बंद होता है। जैसे अनंतानुबंधी कर्म का उदय कहाँ तक रहता है, क्या लिखा है, पहले से दूसरी तक। मान का कहाँ तक, माया का कहाँ तक, लोभ का कहाँ तक, तो इसका मतलब ये हो गया, ये अनंतानुबंधी कषाय क्रोध मान माया लोभ रूप जो है ये पहले गुणस्थान में और दूसरे गुणस्थान में ही फल दे सकता है, सता सकता है अपने को उदय में आकर के। प्रथम गुणस्थान में रहने पर होता है या दूसरे गुणस्थान में रहने पर होता है, अपन यदि प्रथम गुणस्थान में है तो समझना चाहिए कि अनंतानुबंधी का भी उदय है, मिथ्यात्व का भी उदय है वहाँ। कैसे बनते हैं ये पूछ रहे हैं, अनंतानुबंधी का परिणाम यानी भाव, परिणाम यानी भाव, अनंतानुबंधी रूप भाव हुए बिना हम पहले दूसरे गुणस्थान में आ ही नहीं सकते। एग्जाम्पल, जैसे अनंतानुबंधी कषाय का यदि उदय है तो वह धार्मिक अनुष्ठान को करते हुए इससे भौतिक सुख की इच्छा करेगा। ये इच्छा, ये लोभ कषाय है। इच्छा यानी लोभ, ये लोभ कषाय है। ये कौन सा लोभ कषाय है? अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी क्यों कहा इसको? यानी धर्म को गुणों की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा है, धर्म को इंद्रिय विषयों की प्राप्ति के लिए, परिग्रह धन संपत्ति वैभव आदि प्राप्ति के लिए कर रहा है। तो ये उल्टा काम है क्या? नहीं। तो अनंतानुबंधी कषाय का लोभ जीव को उल्टा काम ही कराता है। शब्द का अर्थ समझना चाहते हैं। अनंत, यह शब्द प्रसिद्ध है। अनंत यानी जिसका अंत नहीं है, वह अनंत। संसार का कोई अंत है क्या? नहीं है। संसार करते आए हैं और करते भी रह सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। अनंत संसार को बढ़ाने में जो निमित्त बनता है उसको अनंत कहते हैं। उस निमित्त को, जो भी निमित्त है, उस निमित्त को अनंत कहते हैं। और वह निमित्त कौन है यदि ये प्रश्न करते हैं, तो वह निमित्त तो मिथ्यात्व है, कषाय नहीं, मिथ्यात्व है। यानी अनंत किसका नाम है? ये मिथ्यात्व का नाम है। जो अनंत संसार में परिभ्रमण करके संसार में ही रहने के लिए निमित्त बनता है, कारण बनता है, हेतु बनता है, उसका नाम है मिथ्यात्व। और इस मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाली जो कषाय होती है, इस मिथ्यात्व को बढ़ाने के लिए निमित्त बनने वाली जो कषाय होती है, उस कषाय का नामकरण किया गया है अनंतानुबंधी कषाय। तो अनंतानुबंधी कषाय को, अनंतानुबंधी जो नाम पड़ा है वो मिथ्यात्व के कारण से पड़ा है। जहां मिथ्यात्व रहेगा वहां अनंतानुबंधी रहेगी। यानी ये पहले गुणस्थान में घटित कर लेना। मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाला कौन? अनंतानुबंधी। पुष्ट करेगा तो यही करेगा। अनंत संसार के अभिवृद्धि में कारण बनने वाला तो मिथ्यात्व है, और उस मिथ्यात्व को बांधने वाली कषाय का नाम है अनंतानुबंधी। इसका अर्थ ये हुआ कि अनंतानुबंधी कषाय ही मिथ्यात्व को पुष्ट कर सकता है, अन्य कषाय नहीं। हाँ, सम्यक्तो को धारण करने नहीं देगा। अनंतानुबंधी के कारण से सम्यक्तो का घात होता है नियम से। तो सम्यक्तो का घात होता है तो क्या सम्यक ज्ञान का घात नहीं होता? क्योंकि ये दोनों एक साथ प्रकट होते हैं ना, गुण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, दोनों एक साथ प्रकट होने वाले गुण हैं। तो सम्यक्तो का अगर घात कर रहा है अनंतानुबंधी, तो सम्यक ज्ञान का भी घात कर रहा है। तो एक साथ दोनों का घात करता है। अब सम्यक चारित्र तीसरा रह गया, तो अनंतानुबंधी इसका घातक है क्या? नहीं। इसका भी घातक हो गया, सम्यक चारित्र भी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? देखो, सम्यक दर्शन का घात किया तो सम्यक दर्शन चला गया और सम्यक ज्ञान भी चला गया। और ये कौन सा है? सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र बोलो उसको। जब तक इन दोनों के साथ ये था चारित्र, तब तक सम्यक था, सम्यक यथार्थ था, सत्य था। अब यह चारित्र तो बच गया, परंतु ये उसके इसके साथ ही ये दोनों चले गए। इसके दोनों चले जाने के बाद ये तो बच सकता है, लेकिन सम्यक रूप में नहीं बचता, मिथ्या रूप में बच जाता है। जैसे कोई मुनि महाराज है, मान लो उदाहरण देते हैं इसके लिए, मुनि महाराज ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों गुणों को धारण कर लिया। अब वो महाव्रती मुनि बन गए। मुनि बनने के पश्चात वो विचार करते हैं, मुनि तो बन गए, लेकिन इसमें मुनि बनने के बाद इंद्रिय विषयों को इच्छा नहीं करना है, ऐसा कहा है। जब तक हम इच्छा नहीं करेंगे तब तक सम्यक दर्शन भी रहेगा, ज्ञान भी रहेगा और चारित्र भी रहेगा, उनको मालूम है। मालूम होने के बावजूद भी यदि हम उल्टा भी कर सकते हैं ना काम, सम्यक दर्शन जाता है तो जाने दो, ज्ञान भी जाता है तो जाने दो, परंतु हमको इंद्रिय विषय में आसक्ति हो गई और इंद्रिय विषयों में आसक्ति होने के साथ साथ संसार सुख ही वास्तविक सुख है इंद्रिय विषय वाला, ऐसी श्रद्धा जग गई, तो समीचीन श्रद्धा का हनन हुआ और विषय कषायों के प्रति जो श्रद्धा जगी, यही इंद्रिय सुख ही असली सुख है ऐसा जो विश्वास जम गया, इससे क्या सम्यक दर्शन का घात नहीं होगा? होगा। तो सम्यक दर्शन का घात हो गया, सम्यक दर्शन का घात हो गया तो ज्ञान का घात नहीं हुआ? हो गया। सम्यक ज्ञान का घात हो गया तो सम्यक चारित्र में उसकी जो समीचीनता थी इन दोनों के कारण से थी, सम्यक दर्शन के कारण से और ज्ञान के कारण से। अब ये दोनों छोड़ के चले गए, मुनि महाराज को छोड़ के चले गए। अब चारित्र एक रहा, तो ये दोनों छोड़ करके जब जाते रहते हैं उसकी समीचीनता को छीन करके ही ले जाते हैं और ये मिथ्या रह जाता है। उसकी समीचीनता को छीन लेते हैं, साथ ही ले जाते हैं, और ये यदि आते हैं तो उसमें समीचीनता को प्रतिष्ठित करते हैं। कौन आते हैं? तो ज्ञान और सम्यक, तो ये दोनों यदि रहते हैं तो चारित्र को समीचीन प्रतिष्ठित करते हैं, करने में निमित्त बनते हैं। पर इनके आने पर चारित्र समीचीन हो ही जाता है ऐसा नहीं, ये भी है। क्योंकि देखो, मुनि महाराज का गुणस्थान कौन सा? छठा सातवां, वहां रहते थे। जब तक छठे सातवें गुणस्थान में रहते हैं, ध्यान से सुनना, बिठाना इस विषय को, थोड़ा बहुत गौर से सुनना, नया विषय है, जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करोगे तो जाएगा। वो एकाग्रता कर लो, मन को एकाग्र बना के सुन लो। छठे सप्तम गुणस्थान में मुनि महाराज रहते हैं, तीनों रत्नत्र है क्या? नहीं है। सम्यक दर्शन भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी है। अब मुनि महाराज के मन में ये भाव आया क्या? अरे, संसार सुख ही असली सुख है, मोक्ष कहाँ है? किसने देखा? कुछ नहीं है। ये भाव आ गए तो इससे किस गुण का हनन हुआ? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, विश्वास उड़ गया ना, रत्नत्रय स्वरूप धर्म के ऊपर से विश्वास उड़ा और मोक्ष तत्व के प्रति श्रद्धान नहीं है, उस विश्वास श्रद्धान का घात हुआ। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, इन दोनों का घात हुआ। जब तक विश्वास है तब तक तो सम्यक दर्शन है और सम्यक ज्ञान है, मोक्ष के प्रति विश्वास, आत्म तत्व के प्रति विश्वास, कर्मों का संवर होता है, निर्जरा भी होती है, ये कर्म हैं इनको निर्जरा करना है, तपस्या से ये नष्ट होते हैं, नष्ट होने पर जीव को मोक्ष मिलता है, आत्मा परमात्मा बनता है, ये सब विश्वास की चीज़ें हैं क्या? नहीं। और विश्वास ना हो तो सम्यक दर्शन रहेगा क्या? नहीं रहेगा।
हाँ,
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ना हो तो छठा सप्तम गुणस्थान बनता भी नहीं है। ये सही है, सही है, क्योंकि गुणों के होने से ही गुणस्थान होगा। तो कौन कितने गुण होने से छठा सप्तम गुणस्थान होगा? तीनों गुण होने से। अब तीनों गुण नहीं है, दो गुण हैं, तो कौन सा गुणस्थान बनेगा? नहीं, दो गुण हैं और चारित्र नहीं है, तीन में से चारित्र नहीं है। पहला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, दो ही गुण हैं, कौन सा गुणस्थान बनेगा? चौथा बनेगा, चौथा बनेगा। और चारित्र को तो मुनियों का चारित्र महाव्रत कहलाता है, मुनि तो नहीं बन रहा है परंतु प्रतिमाधारी बन रहा है, तो कौन सा गुणस्थान बनेगा? पांचवा बनेगा। प्रतिमा धारण करेगा तो पांचवा, मुनिव्रत धारण करेगा तो छठा सप्तम। इतना ध्यान रखना। नहीं, दर्शन और ज्ञान यदि हैं तो मुनि महाराज हो चाहे श्रावक हो, उनका चौथा ही बनेगा। दो ज्ञान गुण है क्या? नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान दोनों हैं, तो कौन सा गुणस्थान बनेगा? चौथा। चाहे वो मुनि भी हो चाहे श्रावक भी हो, अगर ये दोनों सुरक्षित हैं तो चौथा बनेगा। और यदि प्रतिमा धारण करेंगे तो श्रावक का पांचवा बनेगा। और मुनि प्रतिमा धारण तो करते नहीं, वो तो मुनिव्रत धारण पहले से करके रखा है, पहले से मुनिव्रत धारण करके रखा है। सम्यक दर्शन है और सम्यक ज्ञान है, पर चारित्र सम्यक चारित्र नहीं है। दिगंबर हैं, पिंशी कमंडलू हैं, सब कुछ हैं, परंतु चारित्र सम्यक चारित्र नहीं है। क्यों नहीं है? तो सम्यक चारित्र को सम्यक चारित्र के रूप में कन्वर्ट करने के लिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए, पहले तो ये चाहिए दोनों। और क्या आवश्यक है? तो कहते हैं जो महाव्रत रूप जो चारित्र है, उस चारित्र के हनन करने वाली जो कषायें हैं उनको भी हटाओ। तो महाव्रत को नष्ट करने वाली कषायें कौन कौन सी हैं? तो कहते हैं चार प्रकार की कषायें भी पता चला आपको, अनंतानुबंधी, अप्रत्या के अनावरण, प्रत्या के अनावरण, संज्वलन। तो महाव्रत रूप अंतरंग भाव चारित्र को, चारित्र दो प्रकार का है, द्रव्य चारित्र और भाव चारित्र। द्रव्य चारित्र यानी हम शरीर से जो पालन करते हैं, जीव की रक्षा करते हैं, जीव को नहीं मारते, ये अहिंसा महाव्रत है जिसको हम मन वचन काय से पालन करते हैं। परंतु ये पालन करना बाह्य चारित्र कहलाता है, बाहर के जीवों की हिंसा न करना बाह्य चारित्र, और अंतरंग में हिंसा रूप भावों को नहीं करना ये अंतरंग चारित्र है। तो अंतरंग में हिंसा करने के जो भाव होते हैं वो कषाय से ही होते हैं, कषाय के बिना नहीं होते। और ऐसे हिंसा के भावों को रोकने के लिए क्या जीतना? तो कषाय को जीतना। और कौन सी कषाय जीतना? वो कषाय जीतो जो महाव्रत को घात कर रहा है, भाव महाव्रत को। तो कौन सा जीतना? तो भाव महाव्रत को घात करने वाली कषाय ये प्रत्याख्यानावरणी है। प्रत्याख्यानावरणी महाव्रत का घात करता है और अप्रत्याख्यानावरणी देशव्रत का घातक है। और अनंत अनुबंधी कषाय सम्यक्तो का भी घातक है और चारित्र का भी घातक है। चारित्र का कैसे घातक? तो भाव चारित्र नहीं रहता। अनंत अनुबंधी कषाय यदि है तो मुनि के पास भाव चारित्र रहेगा ही नहीं, उसका घात रहेगा। इसका मतलब इसके उदय में भाव चारित्र नहीं रहता, इसका अर्थ भाव चारित्र का घातक है ही वो, है ना? भाव चारित्र का घातक है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें एक विशेष बात और आचार्य ने समझाई है, वो बड़ी गहरी बात है, जितना समझ में आता है ग्रहण कर लो, और नहीं आता है तो बार बार चर्चा करने पर वो भी समझ में आ जाएगा, पर सुनना तो जरूरी है ना पहली बार। तो जितना जितना आप सुनते जाते हैं उतना उतना जितना ग्रहण होता है उतना ही सही। क्षोभशम चाहिए ना इसके लिए, जितना क्षोभशम उतना ग्रहण होता है, एकाएक ही सब कैच नहीं होता। तो आज भी चर्चा करेंगे तो आज थोड़ा ग्रहण हुआ, कल के दिन और चर्चा आ गई तो कल के दिन थोड़ा 5% और समझदार बढ़ गई। बार बार चर्चा करेंगे तो 100% आपको भी समझ में आता है। मत समझो कि हम तो इस विषय को समझने के अधिकारी नहीं है, ऐसा मानसिकता नहीं बनाना। हम असमर्थ हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, ऐसा मानसिकता बना के बैठेंगे तो बड़ा घाटा हो जाएगा। देखो थाली परोसा है और भोजन करो कह रहे हैं, मैं कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे हाथ में शक्ति नहीं, हाथ में शक्ति नहीं, ऐसा कहते तो हाथ में शक्ति रहेगी नहीं। हाथ में शक्ति भी ना हो और भूख लगी हो, कम शक्ति हो, हाथ उठ नहीं रहा हो, तो भी प्रयास करते हो क्या? नहीं, भूख लगी तो उसमें तो प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ धर्म के क्षेत्र में मोक्ष मार्ग में प्रयास नहीं हो पाता, समय हो गया। जब अच्छी बात समझने का वो समय आ जाता है ना तो ज्ञानावरणी कर्म का उदय आ जाता है और हमको समय ही ठप करा देता है वो। तो थोड़ा इसको थोड़े में बताता हूँ, चार प्रकार की कषाय। रहने तो अभी खटपट मत करो, आवाज मत करो, जैसा का तैसा बैठ जाओ। चार अनंतानुबंधी, ये चार कषाय हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी, संज्वलन। ये गुणों के घातक हैं। तो अनंत अनुबंधी दोनों के घातक हैं, चारित्र का भी घातक है और सम्यक्तों का भी। सम्यक्तों का घातक है तो क्या ज्ञान का घातक नहीं? ज्ञान का घातक है। सम्यक्तों का घातक है कहने से ज्ञान का भी घातक है, ये समझ लेना चाहिए। सम्यक ज्ञान का घातक है। तो अनंत अनुबंधी कषाय दोनों गुणों का घातक, चारित्र का भी घातक और सम्यक्तों का भी घातक। अप्रत्याख्यानावरणी कषाय ये देश संयम का घातक, और प्रत्याख्यानावरणी कषाय सकल संयम का घातक। इतना समझ में आ गया? तो ये कषायें बाह्य चारित्र को घात करती हैं कि अंतरंग चारित्र को? अंतरंग चारित्र को, क्योंकि कषाय रूप भावों से भाव चारित्र का नाश होता है, और कषाय रूप भावों से ही हम बाहर में क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर किसी को मारते हैं, प्रमाद करते हैं, किसी का विघात होता है, किसी को दुख देते हैं, ये बाह्य चारित्र का घात कहलाता है। बाह्य चारित्र का घात, कषाय आए बिना, प्रमाद आए बिना बाह्य जीवों की हिंसा हो सकती है क्या? तो बाह्य जीवों की रक्षा करना ये बाह्य चारित्र था, उसकी हिंसा क्यों हो गई? अंतरंग चारित्र कषाय आने से, तो जिसको अंतरंग में कषाय आएगा बाह्य हिंसा कर सकता है वो, भले ही नहीं कर रहा हो लेकिन कर सकता है। अभी नहीं सही, कुछ समय बाद कर सकता है वो, करने की पूरी संभावना बनती है। तो इस कषाय को रोक रखेंगे तो हम सावधान होंगे, और सावधान होंगे तो बाह्य चारित्र में दोष नहीं आएगा, वो मारने के भाव नहीं आएगा और मारने का पुरुषार्थ भी नहीं कर सकेगा। तो चारित्र, बाह्य चारित्र का रक्षण इस प्रकार से होता है। अंतरंग चारित्र हो तो ही बाह्य चारित्र का रक्षण बहुत समय तक हो सकता है, अन्यथा कुछ समय के लिए रहेगा और छूट जाएगा। तो बाह्य चारित्र को बहुत समय तक भी हम सुरक्षित रख सकते हैं, परंतु उसमें ही केवल सावधान हैं, और भीतरी कषायों को जीतने का हमारा यदि लक्ष्य नहीं है तो बाह्य चारित्र रहेगा, अभ्यंतर चारित्र नहीं रहेगा। अभव जीव भी मुनि बनता है और वह बाह्य चारित्र को धारण करता है, अहिंसा का पालन करता है, परिग्रह बिल्कुल नहीं रखता है, परिग्रह बिल्कुल स्पर्श भी नहीं करता, उसकी इच्छा भी नहीं करता। वर्तमान का जो परिग्रह सामने वाला होता है, दसों प्रकार का परिग्रह त्याग करके ही वह मुनि बनता है। अभवी जीव भी, जबकि वो मोक्ष नहीं जा सकता तब भी मुनि बनता है। क्यों बनता है? बाह्य परिग्रह के प्रति इच्छा है लेकिन वर्तमान परिग्रह के प्रति इच्छा नहीं है। वर्तमान परिग्रह के प्रति तो त्याग भाव है, और इसको त्याग करके भावी काल में स्वर्ग आदि में जाने के बाद ये जो 10 त्यागे हैं वहां 10 की जगह 10,000 मिले, ऐसा कमर्शियल चलता है। चारित्र कमर्शियल चारित्र है वो, अभी 10 त्यागा हूँ और ये बाह्य चारित्र को मैं धारण करता हूँ। यह बाह्य चारित्र यहाँ 10 त्यागने रूप जो बाह्य चारित्र है, यह 10 ये चारित्र हमारे लिए 10,000 दे दे परिग्रह। 10 परिग्रह छोड़ रहा हूँ, 10,000 परिग्रह मिले, इस कामना के साथ वह पुरुषार्थ करता है। तो ये धर्म पुरुषार्थ की कोटि में नहीं आता। जो कर्मों को नाश करने के लिए चारित्र ग्रहण करता है, कर्मों का संवर निर्जरा के लिए करता है, वो भाव चारित्र की कोटि में आता है। भाव चारित्र उसी को प्राप्त होता है जो कर्म निर्जरा के लिए दीक्षा ले चुका है। उसको भाव चारित्र की उपलब्धि नहीं होती, उसको केवल द्रव्य चारित्र की ही उपलब्धि होती है जो कर्म की निर्जरा के लिए तो कर नहीं रहा है और परिग्रह को बढ़ाने के लिए ही परिग्रह का त्याग कर रहा है। तो ये जैसे आप लोग करते हैं ना, 5 लाख घर में रखने से क्या फायदा, वही बैंक में रखेंगे तो और बढ़ेंगे। 10 साल, हाँ 10 साल, 10 साल अगर नहीं निकालेंगे तो 10 का 20 हो जाएगा। तो ये कमर्शियल है कि नहीं? तो ऐसा अभव्य जीव करता है। अभव्य जीव को दूरांदूर नहीं कहना, वो दूरांदूर भव्य आदि लक्षण हम अलग से समझाएंगे, बड़ा सूक्ष्म विषय है वो भी। हाँ?